हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। स्वागत है आप सबका भगवद गीता के इन अध्यायों की चर्चा पर। अब तक हम लोग 11 अध्यायों पर चर्चा कर चुके हैं भगवद गीता के, और आज 12वें अध्याय की चर्चा को करेंगे। 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये भक्ति का जो वर्णन है, जैसे हमने प्रारंभ में बताया था, भगवद गीता 3 भागों में बटी है। पहला भाग पहले से छठा, आखिरी भाग 13 से 18, और जो बीच के 7 से 12 हैं, ये भक्ति शुद्ध भक्ति को दर्शाते हैं। और 12वां अध्याय अंतिम अध्याय है, जहां भगवान अब शुद्ध भक्ति की बात को समाप्त करके फिर से 13वें अध्याय से ज्ञान को प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, छोटा सा अध्याय है 20 श्लोकों का, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, बहुत कुछ सिखा जाता है हमें। तो आइए इस अध्याय पर अब चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। कैसे इस अध्याय को अब हम लोग समझ सकते हैं, तो उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सो जैसे हम हर क्लास में आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये चर्चा आधारित है भगवद गीता यथारूप पर। भगवद गीता यथारूप, जिसको जिस पर टीका, अर्थात ये एक टीका है। भगवद गीता तो व्यासदेव ने लिखी हुई है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उस पर अलग अलग आचार्यों ने टीकाएं दी हैं। उन टीकाओं के आधार पर हम भगवद गीता को समझते हैं। सो भगवद गीता यथारूप क्या है? भगवद गीता यथारूप वो टीका है जो जैसे अर्जुन ने समझा वैसे ही हमारे लिए प्रस्तुत हुआ है। क्योंकि भगवद गीता के लिए लोग बहुत सारी टीकाएं करते हैं, और उन टीकाओं में से श्री कृष्ण को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, या श्री कृष्ण को निकाल देते हैं, और फिर कभी कभी ऐसी टीकाएं होती हैं जिनसे ये लगता है कि महाभारत कभी हुआ ही नहीं, श्री कृष्ण कभी थे ही नहीं, ये केवल कल्पना मात्र है। तो ऐसी सब टीकाओं से हमारा हृदय नहीं बदलता, भक्ति नहीं आती। इसीलिए क्या आवश्यक है? ऐसी टीका यथारूप, जैसे है वैसे ही, कोई बदलाव नहीं। जो श्री कृष्ण ने कहा, जो श्री कृष्ण के मन में था कहते समय भाव, जैसे अर्जुन ने समझा, बस उसको प्रकट करना। और इसको प्रकट किया है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। जिनके इस वर्ष हम 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अभी बस दो दिनों में जन्माष्टमी है कल। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी के अगले दिवस पर श्रील प्रभुपाद जी का 125वां आविर्भाव दिवस, या आपकी भाषा में जन्म दिवस कह सकते हैं। तो आज से 125 साल पहले वो प्रकट हुए थे, सो उसको हम लोग मना रहे हैं। और इस अवसर पर भगवद गीता के 18 अध्यायों को सुन लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो 12वें अध्याय पर चर्चा शुरू करते हैं, जो भक्ति योग है। 12वां अध्याय है भक्ति योग, भक्ति का वर्णन है, शुद्ध भक्ति का वर्णन। तो इस अध्याय में हम इस अध्याय के 20 श्लोकों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जहां 7वें पहले से 7 श्लोक तक भगवान वर्णन कर रहे हैं, अलग अलग वर्णन भगवान कर रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भक्ति श्रेष्ठ है या निराकारवाद, अर्थात साधारणतः दो होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण, तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, आप स्पष्ट बताइए। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं इन 7 श्लोकों में। फिर 8 से लेकर 12 ये जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, क्योंकि हमें बताते हैं कि हम किसी न किसी तरह भगवान की सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये नहीं है इसीलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान 8 से 12 श्लोकों में बता रहे हैं, अगर तुम ये कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं कम से कम इसको करो, ये नहीं कम से कम इसको करो, कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़ सकते हैं। और फिर ये बताने के बाद आखिरी विभाग 13 से लेकर हम लोग 20 श्लोकों तक देखते हैं, भगवान खुद ही ऐसे गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा भक्त उनको प्रिय हो जाता। अब और क्या चाहिए हमें इस जीवन में, अगर हमें ये मिल जाए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अगर अपने अंदर ले आए तो कृष्ण को हम बहुत प्रिय हो जाएंगे। देखिए, ये प्रेम का प्राकट्य है, इसे प्रेम कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस जगत में एक प्रेमी प्रेमिका है, तो हमेशा वो चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ करें जो दूसरे को आनंद दे, पसंद हो। अगर उनको ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, हम छोड़ देते हैं, हम कुछ और चीज लेंगे जो उनको पसंद है। तो यही प्रेम कृष्ण से दर्शाना है। कृष्ण खुद कह रहे हैं मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं, ये गुण आपके अंदर अच्छे लगते हैं, हमें तुरंत उन गुणों को लाने का प्रयास करना चाहिए, ये प्रेम है। तो ये जो 12वां अध्याय है, इसका प्रारंभ होता है भक्ति के महत्व से, भक्ति का गुणगान से, और इसका अंत होता है प्रेम से, कि कैसे हम कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं उन गुणों को लाकर। तो 11वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि भगवान ने अपना विराट रूप दर्शाया। भगवान ने विराट रूप दर्शाकर अपना जो निराकार, या कहना चाहिए विराट रूप प्रकट किया। हालांकि उन्होंने अंत में भक्ति का वर्णन किया, द्विभुज रूप भी दिखाया और भक्ति का गुणगान भी किया। हमने कल सुना था सार, 11वें अध्याय में भगवद गीता का सार अंतिम श्लोक में, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभू। तो ये सारी चीजें हमने कल सुनी। तो अब भगवान ने उस चीज को कह दिया। तो अर्जुन पहले भक्ति का विषय सुन रहे थे, बीच में उन्होंने केवल ये प्रश्न पूछ लिया तो ये विराट रूप आ गया। अब फिर से अर्जुन भक्ति के विषय में सुनना चाहते, तो इसीलिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो पहला श्लोक इस अध्याय का है, जहां अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वं परियुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन कह रहे हैं कि एक बात बताइए, आपने मुझे बताया, सब दिखाया, बहुत अच्छा है, आपने अब तक हमें निराकार, ऐसे लोग जो सगुणवादी नहीं है निर्गुणवादी हैं उनका बताया, साकार का बताया, विराट रूप का वर्णन का बताया, अब ये बताइए कि दोनों में से अच्छा क्या है। एवं सतत युक्ता ये, मतलब जो सतत आपकी सेवा में लगे हुए हैं, या फिर अव्यक्तम, जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। सो जब से अध्यात्म का वर्णन है, तब से ये दो श्रेणियां सदैव रही हैं, एक जो सगुणवादी हैं, एक जो निर्गुणवादी हैं। और ये कभी कभी लोगों में भेद हो जाता है, बहुत बड़ा मतभेद चला जाता है, कोई कहते नहीं भगवान निराकार है, कोई कहते नहीं भगवान साकार है, और दोनों आपस में विरोध करते हैं। लेकिन सही समझ क्या है, अब किसको सही माने, क्योंकि सभी अपने शास्त्रों से, सभी वैदिक साहित्यों से प्रमाण देते हैं कि देखो यहां पर लिखा गया भगवान निराकार है, वो कहते देखो यहां लिखा गया है साकार है। तो ये बहुत बड़ा विवाद हमेशा से चलता आ रहा है, अर्जुन के समय भी था, तभी अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि मैंने बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए अर्जुन कह रहा हो कि भाई सुना मैंने, ये भी सुना वो भी सुना, आप बताइए, आप भगवान हैं, आप सबसे अच्छा जानते हैं, आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। हम जब किसी से ज्ञान लेते हैं, हम देखते हैं उस व्यक्ति की डिग्री क्या है। अच्छा ये बहुत बड़े जज रहे हैं, हम इनसे लॉ पढ़ लेंगे। अच्छा ये बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्ट सर्जन हैं, हम इनसे हार्ट के बारे में सुन लेंगे। तो जो बहुत अच्छे होते हैं उस क्षेत्र में, उनसे हम ज्ञान लेते हैं। और कृष्ण ये सारे ज्ञान के भंडार हैं, इनसे बड़ा कौन हो सकता है ज्ञान में। इसीलिए अर्जुन उनसे प्रश्न कर रहा है कि आप बताइए कि क्या होना चाहिए, सही क्या है। तो ये दो रहे हैं, तो सगुणवादी और निर्गुणवादी, तो क्या सही है, क्या भगवान साकार है या निराकार है। तो जैसे हमने कहा दोनों तरफ के पक्ष आपस में विवाद करते हैं, सत्य ये है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। इसीलिए दोनों हमेशा लड़ते हैं और दोनों सही बातें शास्त्रों से बताते रहते, देखो शास्त्र में ये दिया, देखो शास्त्र में ये दिया है। तो दोनों सही है, भगवान साकार भी हैं और भगवान निराकार भी हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकते भगवान निराकार और क्यों नहीं हो सकते भगवान साकार, क्या कारण है, कौन रोक सकता है भगवान को। तो इसलिए भगवान दोनों हैं, लेकिन अब दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो दोनों तो हैं, भगवान साकार भी है निराकार भी है, तो अब साकार श्रेष्ठ है या निराकार, ये अर्जुन का प्रश्न है। और अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान दूसरे श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। और सुंदर बात भगवान ने कही, अर्जुन तुम ये विवाद के बारे में जानना चाहते हो, प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो, तो मैं बताता हूं कि इसका उत्तर क्या है। मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो लोग अपना मन मेरे साकार रूप में लगाकर और नित्य युक्त, नित्य मेरी सेवा में युक्त होते हैं, उससे मेरी पूजा करते हैं, उपासते मतलब सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए रूप चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैया वेश्य मनो, मेरे रूप में जो मन को लगाते हैं और नित्य युक्त उपासते, ऐसे मेरी नित्य सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, किससे, श्रद्धया परयोपेतास, श्रद्धा से, उनके अंदर बहुत दृढ़ श्रद्धा होती है, ते में युक्त तमामतः, तो मेरा मत है, मेरा मानना ये है कि वो श्रेष्ठ हैं। तो देखिए यहां भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, अब हमें कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान साकार हैं निराकार हैं, दोनों हैं, दोनों में श्रेष्ठ क्या है, दोनों में श्रेष्ठ है साकार रूप। क्यों, क्योंकि साकार से निराकार आते हैं। भगवद गीता में ही भगवान ने वर्णन किया, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति निराकार रूप, ये मुझसे आता है। तो इसीलिए साकार को यहां पर भगवान श्रेष्ठ मान रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, वो पूर्ण है, भगवान वर्णन करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके मन मेरे रूप पर लगे हुए हैं, वो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, नित्य युक्त उपासते, उपासना कर रहे हैं, कैसे, बहुत श्रद्धा के साथ। तो ये महत्वपूर्ण चीज हमें जाननी है। इस 12वें अध्याय में भगवान ने कोई संशय नहीं रखा, स्पष्ट कह दिया कि मेरे मतलब कृष्ण के उनके रूप की पूजा करने वाले को श्रेष्ठ माना है। तो फिर प्रश्न आता है कि ठीक है वे लोग तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर कोई भगवान के अव्यक्त रूप की पूजा कर रहे हैं तो उनका क्या होगा। हमको ये बात तो विश्वास हो गई पूरी कि जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं उनको भगवान श्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग जो अव्यक्त निराकार की पूजा करते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है, या वो क्या भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो भगवान उनके बारे में भी कहते हैं कि नहीं, वे लोग भी मुझे प्राप्त करेंगे लेकिन बहुत समय के बाद, अंततः वो मुझे समर्पण करेंगे ही। कैसे करेंगे? क्योंकि वो किसकी पूजा कर रहे हैं? वो ऐसे निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं जो अव्यक्त है, हमारी इंद्रियों के परे है, सर्वत्र व्याप्त है, जिसको समझ पाना बहुत कठिन है, उसमें बदलाव नहीं होता, ऐसे ब्रह्म की पूजा वो लोग कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इस पूजा को करते करते या जैसे वो करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। कैसे पूजा की जाती है अव्यक्त की? भगवान कहते हैं इंद्रियों को वश में करके, हाँ, या सबके सबको समान देखते हुए, सबके लिए कोई अच्छा कार्य करते हुए, कोई परोपकार करते हुए, और इसमें बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन अंततः कृष्ण को समर्पण करना होता है। पूर्णता तभी आएगी जब वो कृष्ण को समर्पण करेंगे, अन्यथा पूर्णता नहीं आ सकती। तो ये जो पथ है निराकारवाद का, या भगवान को निर्गुण निराकार मानना, बहुत समय से रहा है। जैसे हमने बताया तो अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां होती हैं, साकार और निराकार, या ज्ञान के पथ को पालन करने वाले और भक्ति के पथ को पालन करने वाले। तो जो निराकार में है, बहुत सारे कष्ट हैं उनके जीवन में, उनका जो साक्षात्कार है वो बहुत सीमित साक्षात्कार है। क्यों? भागवतम में बताया गया है कि भगवान के साक्षात्कार के तीन स्तर हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जिनको केवल ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है वो परमात्मा और भगवान साक्षात्कार से दूर हैं, इसीलिए इस साक्षात्कार को अधूरा साक्षात्कार कहते हैं। जिन्होंने परमात्मा साक्षात्कार कर लिया, उन्हें ब्रह्म का तो साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का हो गया, लेकिन भगवान का नहीं हुआ, वो भी अधूरा है। केवल जो भक्ति योगी हैं, भगवान यह बहुत स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को, केवल जो भक्ति कर रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं, वे लोग ही पूर्ण साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए भगवान भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति बड़ी सरल है, बहुत सरलता से इसको पालन किया जा सकता है। और भक्ति का गुणगान करते हुए भगवान भक्तों की स्थिति का भी वर्णन कर देते हैं। तो भक्ति का क्या वर्णन करते हैं, भक्ति कैसे है? ये ऐसा है कि भगवान को अगर हमें गुणगान करना है तो भक्ति के द्वारा किया जा सकता है। अगर हमें साक्षात्कार करना है तो ये साक्षात्कार हो सकता है कि भगवान बहुत महान है और हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, और इसके द्वारा अगर हम भक्ति के सिद्धांतों को देखें तो बड़ी आसानी से अपने मन को भगवान पर स्थिर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्तों के लिए भगवान एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बोल देते हैं, ये बताते हुए कि मेरे भक्त बड़े भाग्यवान हैं, उनको ये मत समझो। जैसे भगवान के भक्त हुए सुदामा, लोग सोचते थे गरीब व्यक्ति है। आज हम सुदामा की बात करते हैं और अन्य लोगों की, उस समय कितने गरीब व्यक्ति हुए होंगे, कितने ब्राह्मण हुए होंगे, लेकिन हम चर्चा सुदामा की करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा भाग्यवान था, भगवान का भक्त था। तो क्या भाग्य होता है भक्तों का, ये भगवान बहुत सुंदर श्लोक में बताते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामी न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसा। भगवान कहते हैं तेषा, तेषा मतलब जिन भक्तों का उन्होंने वर्णन कर दिया, तो उन भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, तेषा अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करूंगा। भगवान कहते हैं कहां से, तेषा अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु का संसार है जहां जन्म मृत्यु बारंबार होती है, इसमें मैं उनका उद्धार करूंगा इससे। और कब करेंगे, भवामी नचिरात पार्थ, हे पार्थ मैं बहुत देर नहीं करूंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। भवामी नचिरात पार्थ किसके लिए, मैया वेशित चेत साम, जिनके चित्त मुझ में लगे हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है। आप देखिए यहाँ जिस चित्र में आप देख सकते हैं कि भगवान कैसे उद्धार करने के लिए भागते हुए आते हैं अपने भक्त का। तेषाम अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरा, इस जगत में हम जब हैं ये मृत्यु संसार सागर है, भव सागर कहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या है ये हम बारंबार जन्म लेना और बारंबार मरना, ये इस जीवन है। और हम इसी जीवन में फंसे रहते हैं, हमें लगता है यही तो जीवन है। अरे हमने जन्म लिया है, हम पढ़ाई करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम विवाह करेंगे, हम संतान उत्पन्न करेंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, और मरने के बाद क्या, फिर से जन्म लेंगे, फिर वही। तो बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि एक बात बताइए कि अगर यही यही करना है, जन्म ले लिया, बड़े हो गए, पैसा कमा लिया, संतान हो गई, विवाह हो गया, संतान हो गई, और फिर उसके बाद बूढ़े हो गए, मर गए, फिर वही, तो मिला क्या। जो चीजें जीवन भर जिसके पीछे भागे वो तो छोड़कर चले जाना, ले जा तो सकते नहीं, तो मिला क्या। ये बड़ी महत्व, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ये नहीं सोचता कि दुनिया वाले यही कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, मैं भी वही करूंगा और अगली बार भी वही। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। जैसे एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, कहा गया कि देखो तुम ये इतना गलत काम करते हो, तुम ये पाप कर रहे हो, तुम्हारा अगला जीवन बहुत खराब होगा। उसने कहा अच्छा क्या होगा। देखो आप अगले जीवन में कुत्ते बनोगे। उसने थोड़ा देर सोचा और उसने कहा क्या प्रॉब्लम है कुत्ता बनने में, बहुत अच्छा जीवन है कुत्ते का, आराम से खाता है, कोई काम नहीं करता, ऑफिस नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, इंजीनियरिंग नहीं करता। तो अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो कुत्ता बनने के लिए तैयार है। या कोई व्यक्ति एक बार, एक किसी ने हमें चुटकुला सुनाया था कि एक बार एक व्यक्ति पहुंचा लोगों को ये बताने के लिए एक कि शराब नहीं पीनी चाहिए। तो उसने देखा वो, तो उसने कहा एक व्यक्ति से कि देखो तुम शराब पीते हो तुम नरक जाओगे। तो उसने कहा अच्छा हाँ। उसने बोले कि मेरा फ्रेंड है वो भी पीता है, वो भी नरक जाएगा। अरे मेरे पिताजी भी पीते हैं, वो भी नरक जाएंगे। तो उसने थोड़ी देर सोचा और कहा कि अगर मेरा फ्रेंड भी नरक में जाएगा, पिताजी भी नरक में जाएंगे, मैं भी नरक में जाऊंगा, तो प्रॉब्लम क्या है, वहां बैठकर तीनों शराब पिएंगे। ये मूर्खता, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो हमें कुत्ता बनने में रुचि नहीं होनी चाहिए, नरक जाने में रुचि नहीं होनी चाहिए, हमारी रुचि होनी चाहिए भगवान के धाम जाने, उसे बुद्धिमानी कहा गया। तो यहां भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता, उन लोगों को जिनके चित्त मुझ में लगे हैं मैं उद्धार करने वाला हूं। तेषाम अहम समुद्धरता कहां से, मृत्यु संसार सागरात। तो देखिए बुद्धिमान बनिए, उन चीजों के पीछे मत भागिए जो छूटने वाली हैं, वो तो वैसे भी मिलेंगी। तो इसका अर्थ क्या है, हर व्यक्ति काम करना बंद कर दे, हर व्यक्ति बस बैठ जाए, नहीं, कर्मयोगी बनिए, काम करिए लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखकर। हाँ अगर कोई जीवन कृष्ण को समर्पण कर सके सबसे अच्छी बात है, कर देना चाहिए। तो मन में एक प्रश्न आता है, अच्छा एक थियोरेटिकली ये मान लें कि दुनिया के सारे लोगों ने कृष्ण को समर्पण कर दिया, तो क्या कैसे खाएंगे वो लोग? ऑफिस नहीं चलेंगे, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, कैसे खाएंगे वो लोग? क्या होगा? आप लोग ऐसी बातें करते हो, प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा हो भी जाए तो हमें पता है कि होगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सारे लोग बुद्धिमान नहीं है, तो होगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए हो भी जाए, एक कल्पना कर ले हम लोग कि ऐसा हो जाए, तो कैसे सब लोग रहेंगे? अब आप एक बात बताइए हमें कि जितने मनुष्य हैं उससे ज्यादा प्राणी है। 84 लाख योनियां हैं जिनमें केवल 4 लाख मनुष्य हैं, 80 लाख तो पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य प्राणी हैं। वो कौन सी फैक्ट्री चला रहे हैं? वो कौन से ऑफिस में जा रहे हैं? वो कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं? तो क्या भगवान उनका पालन नहीं कर रहे? तो जब 80 लाख का कर सकते हैं, 4 लाख का करने में और कौन सी बड़ी बात है भगवान को? ये बुद्धिमानी। तो इसलिए ये नहीं सोचिए कि क्या होगा। हाँ, हमारा उद्धार होगा वो हमें सोचना जरूरी है। तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ। अब भगवान से, भगवान ने कह दिया कि मैं उद्धार करूंगा, तो मानो अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, लेकिन भगवान कब आओगे आप? अरे इतने सारे कष्ट हो गए, इतने सारे दुख हो गए, कब आओगे? भगवान कहते न चिरात पार्थ, बहुत देर नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, लेकिन तुम मुझे पुकारो तो सही, तुम अपना चित्त मुझ में लगाओ तो सही। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तुमने तो अपना दिल कहीं और लगा रखा है, अपने चित्त को तुमने कहीं और दे रखा है अर्जुन, तो कहां से होगा? खैर ये अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे थे, भगवान हमारे लिए बोल रहे हैं कि अपना चित्त तो लगाओ मुझ में, और तब भवामी न चिरात पार्थ, तब देखो मैं कितना जल्दी आता हूं। मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं अगर तुम मुझे चाहोगे, मुझे पुकारोगे तो क्यों नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे चाहते ही नहीं, तुम चाहते कुछ और हो, किसी और को हो, पुकार भी उसी को रहे हो, केवल दिखाने के लिए मेरे भक्ति कर रहे हो, तो फिर मैं ऐसे लोगों के पास नहीं आऊंगा। तो जीवन का उद्देश्य समझिए, जीवन का उद्देश्य है यहां जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये जीवन का उद्देश्य है कि कृष्ण आए और हमें इस भवसागर से उठाकर ले जाए। कहां ले जाए? अपने धाम। और हर धर्म में इसकी बात हुई है, जीसस ने बहुत जोर दिया इस पर, किंगडम ऑफ गॉड, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, जहां किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है। यही चीज भगवत गीता में भगवान ने कही है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो इसीलिए उस चीज को समझिए, इस चित्र को अपने मन में बसा लीजिए कि भगवान आए हैं और भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर बस हमें हमारा उद्धार करने के लिए ले जाने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है? कम से कम हाथ बढ़ाना है उनकी तरफ। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर भगवान कहेंगे ठीक है पड़े रहो। सो उनकी तरफ हाथ बढ़ाना है हमें इस तरह, और बस भगवान फिर आएंगे। तो ये भक्त की स्थिति है। और अब भगवान बताते हैं ये कहने के बाद कि ठीक है आना तो है, मैं उद्धार करूंगा, तुम्हें कैसे बनना है? तो कोई कह सकता मेरे से उतना नहीं होगा पूरा, आप कहते हो कि सारा कुछ आपके लिए मैं नहीं कर सकता। भगवान कहते कोई बात नहीं, जो कर सकते हो वो करो। और इसीलिए भगवान कहते हैं मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मई एव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते केवल अपना मन, मई एव मन आधत्स्व, अपना मन मुझ में लगाओ। ये पहली चीज भगवान बता रहे, अपनी बुद्धि, मई बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ और उसके द्वारा तुम मुझ में सदैव रहोगे। तो पहली चीज भगवान ने बताई। तो भक्ति की स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ माई भगवान में मन लगा दिया, भगवान में बुद्धि लगा दी। बुद्धि क्या है? बुद्धि आपकी पुत्री की तरह है। सो जब पुत्री होती है तो उसका विवाह करना होता है, तो विवाह कर दीजिए कृष्ण से। और ये काम भीष्म देव ने किया था। जीवन के अंत में जब भीष्म देव बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान ने कहा कुछ उपदेश दो इन लोगों को, ये युधिष्ठिर ये समझ नहीं रहा है, इसको समझाओ। तो भीष्म देव ने ज्ञान दिया राजकुल राज धर्म का, स्त्री धर्म का, बहुत सारे ध्यान दे दिए। और फिर भीष्म देव चुप हो गए। अब उन्होंने सारे ऋण उतार चुके थे, अब उन्होंने पूरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण पर लगाया और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। और पहली ही प्रार्थना में उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये मेरी मति, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। उन्होंने कहा मेरी मति कहां कहां नहीं लगी थी, अब मैं उसका विवाह आपसे कराना चाहता हूं, बस आप में लगाना चाहता हूं। तो भीष्म देव ने जो काम बाणों की शैया पर किया देह छोड़ने से पहले, वो काम आज हमें करना है। इंतजार मत कीजिए बाणों की शैया का, क्योंकि भीष्म देव महान भक्त थे, उतने कष्ट को सहते हुए भी भगवान पर ध्यान लगा सके, हमारे लिए संभव नहीं होगा। जब मृत्यु आएगी, जब कष्ट आएंगे जीवन में, उस समय हम भगवान पर ध्यान लगा सके संभव नहीं होगा। इसलिए आज अभी मई ये व मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान में अपना मन लगाते हैं, और इसीलिए प्रारंभ से ही वो दिव्य स्तर पर होते हैं। कृष्ण यहां कह रहे हैं निवशस्यसि मई एव, मुझ में वास करोगे। तो ये कब हमें अनुभव होता है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा का अर्थ है भगवान के संग रहना, हमेशा भगवान के संग में रहना। तो इसलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान में मन कैसे लगे, भगवान में मन लगाना है, बुद्धि लगानी है, क्या करना है, सेवा में लगे रहिए उनकी, कृष्ण की सेवा में सतत। तुम ये व मन आधत्स्व, और अगर तुम ये नहीं कर सकते, मान लो मैं ये व मन आधत्स्व मन नहीं लगा सकते, तो कम से कम यहाँ भगवान ने कह तो दिया कि सबसे अच्छी चीज है कि मन लगाना चाहिए। तो अगर हम नहीं कर सकते भक्ति, मन कृष्ण पर लगाएं, मन कृष्ण पर नहीं लग सकता, तो हमें साधना अर्थात कुछ नियमों का, भक्ति योग के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे शुद्धिकरण हो हमारी इंद्रियों का, और हमारी इंद्रियां बड़ी आसानी से कृष्ण में लग सकें। इसे भक्ति योग कहा है। तो क्या है भक्ति योग के नियम, क्या करने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपने आप सबके मन में ये आएगा, अरे मन नहीं लग सकता भगवान में पूर्ण रूप से, मैं बहुत प्रयास कर लिया नहीं लग सकता, तो क्या करना चाहिए, थोड़े नियमों का पालन कर लीजिए। क्या नियम का पालन करें, सबसे पहला नियम होना चाहिए, आप भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति योग का वर्णन हो रहा है इस अध्याय में, श्रेष्ठ भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान तो हमें अगर करना है, क्या करना है, सबसे पहली चीज एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को चलाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन, आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस जीवन को बर्बाद मत कीजिए, अपने मन के अधीन मत रहने दीजिए, मार डालेगा मन, क्योंकि इस समय शत्रु है आपका, उसको मित्र बनाना है लेकिन अभी बना नहीं है, इसीलिए किसी के मार्गदर्शन में रहिए। प्रयास कीजिए कि आपका जीवन किसी के मार्गदर्शन में चले, और किसके, एक आध्यात्मिक गुरु, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के निकट है, एक ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों के सार को जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वश में हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल आपके उद्धार के विषय में सोचता है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन में रहकर जैसे भक्ति के नियम हैं, सुबह जल्दी उठना, मंदिर में जाना, प्रार्थना अर्पण करना, ये तो हमारी वैदिक सभ्यता रही है, और विशेष करके भगवान के नाम के मंत्र को उच्चारण करना, जैसे हम लोग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को अर्पण करना और फिर खुद उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना, भगवद गीता को सुनना, भागवतम को सुनना, ये भक्ति के नियम है। ऐसे करने से क्या होगा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो जाएगी। आज हमारे मन में इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करने, धन कमाना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं या कुछ और चीज पाना चाहते हैं, किसी फील्ड में किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान को पाना नहीं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए इसको हम इच्छा को उत्पन्न करेंगे। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते, भगवान देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक सब कह रहे हैं ठीक है भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो, कम से कम मेरे लिए कार्य करो, अपने बाहरी जो इंद्रियां हैं उनको कृष्ण की सेवा में लगाओ, कार्य करो मेरे लिए, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त करोगे। तो भगवान ने सबसे पहले कहा मन लगाओ, मन नहीं लग सकता ठीक है नियमों का पालन कड़ाई से करो, वो नहीं हो सकता, कम से कम मेरे लिए कार्य करना शुरू करो। और अगर कृष्ण के लिए कार्य करना भी कठिन हो जाए हमारे लिए कि हम वो भी नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण के लिए हमसे कोई कार्य नहीं होगा, तो फिर क्या करना चाहिए। अगर कृष्ण के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो कार्य कर रहे हैं उनके फलों को त्यागने की प्रयास शुरू करो। कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हो लेकिन फलों को तो त्यागो, अर्थात किसी के लिए कुछ करो, दूसरे के लिए कुछ तो करो, उससे ही प्रारंभ होगा, धीरे धीरे भक्ति करोगे और आगे आ जाओगे भक्ति के स्तर पर। तो कुछ ना कुछ हमें करना प्रारंभ करना चाहिए, कुछ दान देना, कुछ दूसरों के लिए कार्य करना, दूसरों की मदद करना, कुछ तो कीजिए। हालांकि ये सीधी भक्ति नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो इसको तो करिए। तो ज्ञान लेना इत्यादि सब भगवान बता रहे हैं कि इसको करो, वो भी नहीं कर सकते मतलब, तो कम से कम ज्ञान का अनुशीलन करो, तो इसको भगवान वर्णन करते हैं। और अब हम लोग चर्चा करेंगे आखिरी विभाग की इस अध्याय के, जो बहुत महत्वपूर्ण है आखिरी अध्याय। अब इसमें क्या दिया जा रहा है, अब इसमें हमें उन गुणों को प्रकट करने के लिए प्रकट हो रहे हैं वो गुण कि जिसके द्वारा हम कृष्ण को बहुत प्रिय हो सकते हैं। तो अब उन गुणों की चर्चा भगवान प्रारंभ करते हैं 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक। तो गुण दे रहे हैं क्या होने चाहिए, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः सतर्ण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान ने कहा मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है, यो मद भक्त समे प्रिय, कौन सा भक्त प्रिय है भगवान आपको, तो भगवान गुण दे रहे हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां, मतलब वो व्यक्ति सभी लोगों के लिए उसको कोई द्वेष ना हो। देखिए भगवान इन गुणों को बता रहे हैं जिनको आपको अपने अंदर लाना चाहिए, किसी से हमें द्वेष ना हो। द्वेष मतलब क्या है, हम जब द्वेष करते हैं तो दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन द्वेष की भावना ना हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो फिर कैसा हो, मैत्रः करुणा एव च, उसके अंदर मित्रता का भाव हो, उसके अंदर करुणा हो दूसरों के लिए। तो अभी हमें अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों को कृष्ण की कृपा प्रदान करने के लिए खुद अगर कष्ट लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। तो जो भी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं उसको कृष्ण की कृपा मान लें और आगे बढ़ते रहें, दूसरों की मित्रता करें, सहनशील बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब हम दूसरों के लिए कष्ट लेते, जैसे जीसस ने लिया, जैसे हरिदास ठाकुर ने लिया, ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्र में कि हम देखते हैं कि लोगों ने दूसरों के लिए कष्ट लिए। तो ये गुण भगवान को प्रिय बनाते हैं कि हम भगवान देखते हैं गुण तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए और निर्ममो मतलब बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा है, मम मेरा, संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति। तो ऐसे गुणों की चर्चा भगवान करते हैं और आगे भगवान कहते हैं इन गुणों को कहने के बाद, निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में एकदम समान रहना चाहिए व्यक्ति को और क्षमा करना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट मतलब संतुष्ट रहना चाहिए उसको। दृढ़ निश्चय, किसी चीज का निश्चय करते हैं तो उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मई अर्पिता मनो बुद्धि, जैसे हमने पहले पढ़ा बुद्धि और मन, बुद्धि और मन भगवान में अर्पित करें और दृढ़ता लाएं। तो ये कुछ गुण हैं जो हमें अपने अंदर लाने चाहिए। सम दुख सुखी मतलब कि जब दुख हो और सुख हो उन दोनों में समान रहें, कि भगवान सब आपकी कृपा, आपने कष्ट दिया है ये भी आपकी कृपा है, आप ही दूर करेंगे, आपने सुख दिया है आपकी कृपा है, आप इसको जब तक चाहेंगे हमें रहने देंगे। तो ये मानना जरूरी है कि जो भी भगवान करते हैं, जो भी भगवान ने दिया है, चाहे सुख दें या दुख दें, तो ये भगवान आपकी कृपा है और इसके कारण व्यक्ति संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, तो ये गुण हमें अंदर लाने चाहिए, नहीं तो हम लोग इस जगत में लोगों से द्वेष करते रहते हैं और जब दुख आता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, सुख आता है तो उसमें बह जाते हैं, भूल जाते हैं कि फिर से दुख आने वाला है, ये इस जगत का नियम है। आप बड़े दुख में होते हो, आप किसी तरह किसी से भी प्रार्थना करते हो, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, भगवान से, बस मुझे यहां से निकालो निकालो, और आप एक दिन ऐसा आता कि दुख समाप्त हो जाता है वो वाला, तो आप इतने प्रसन्न हो जाते हो, इतने प्रसन्न हो जाते हो, सब भूल जाते हो, ये भूल जाते हो कि बस थोड़ी देर में दूसरा दुख आने वाला है, क्योंकि ये भौतिक जगत बना ही ऐसा है, एक दुख गया दूसरा इंतजार करता है, बस आने वाला है। और यू दो दुखों के बीच के अंतर को जो हम सुख मानते, तो इसलिए सुख में दुख में ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, आया सुख बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा भगवान रखे वैसे रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें उत्पन्न करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि कभी किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य पशु को आपको कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे हम लोग अपनी जिह्वा के तुष्टि के लिए, केवल जिह्वा को स्वाद देने के लिए किसी पशु को मार देते हैं खाने के लिए, भगवान कह रहे नहीं, एक भक्त कभी किसी को कष्ट नहीं देता। एक भक्त तो चींटी भी नहीं मारना चाहता। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि नारद मुनि एक बार एक वन में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वन में जाते हुए कि वन में प्राणी पड़े हुए हैं, पशु पड़े हुए हैं, आधे कटे हुए, बस मरे हुए, पूरे नहीं मरे हैं, आधे मरे हुए, तड़प रहे हैं, तड़प रहे, तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो देखकर नारद मुनि का हृदय भक्त है, नारद मुनि सहन नहीं कर पाए, देखते गए कहां कहां, देखा तो एक शिकारी है, उसका नाम था मृगारी, तो अरे तुम क्या कर रहे हो, ये कैसे मारते हो इनको, क्यों मारते हो ऐसे। उसने कहा मैंने तो ऐसे ही सीखा है, मुझे तो बड़ा आनंद आता है जब मैं मारता हूँ पशु को, वो तड़पता है, तड़पते देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। नारद मुनि ने कहा अरे तुम जानते नहीं हो क्या कर रहे हो, इन पशुओं को ऐसे मार रहे हो, तुम्हें बहुत कड़ा अपराध लगेगा, पाप लगेगा। फिर नारद मुनि ने उनको सब कुछ बताया तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा ठीक है अब आप जो कहेंगे वो करेंगे, हम अभी गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहते। तो नारद मुनि ने कहा तुम भक्ति करो, महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण जप करो, हम फिर आएंगे। तो जप करने लगे, सब कुछ छोड़ दिया। अगली बार कुछ दिन बाद नारद मुनि आए अपने एक मित्र के साथ, तो देखा कि वो जा रहे दूर से आए, तो अब नारद मुनि आए हैं, गुरु आए हैं, तो प्रणाम करना है। तो अब ये मृगरारी जो भक्त हो चुका, अभी प्रणाम करने जा ही रहा था, रुक गया, उसने ऐसे ही वाला कपड़ा लिया अपना और धीरे 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 ऐसे भूमि से कुछ हटाने लगा। तो नारद मुनि के साथ जो आए थे उन्होंने पूछा अरे ये क्या कर रहा है ये। सो उन्होंने कहा कि ना ये अभी दंडवत करने जा रहा था प्रणाम करने, लेकिन इसने देखा कि भूमि पर चींटियां हैं, इसलिए चींटियों को धीरे से अलग कर रहा है ताकि वो चींटी नहीं मार दे। तो देखिए, जो व्यक्ति पशुओं को आधा मारकर उनमें आनंद लेता था, भक्तों की कृपा से, भक्ति मार्ग के पालन से उसके अंदर ये गुण आ गया कि वो चींटी को भी नहीं मारना चाहता है। ये गुण है, भगवान कह रहे हैं वो दूसरों को कभी कष्ट नहीं देता। और इतना ही नहीं, जब कष्ट आते हैं तो वो खुद प्रभावित भी नहीं होता। भौतिक चीजें हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, ये आप सबका अनुभव है कि हम लोग जब भौतिक जगत में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। कभी कुछ डिस्टर्ब करता है, कभी कुछ डिस्टर्ब करता है, हम अच्छा रहना चाहते हैं, कभी कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति, मेरा भक्त, इन सब चीजों से प्रभावित ही नहीं होता। धन है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि सदैव वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है और वो दूसरों के प्रति बहुत दयालु है। ये उसका एक गुण है, भक्त का गुण होता है कि वो दूसरों के प्रति दयालु होता है, देना चाहता है दूसरों को, कभी लेना नहीं चाहता उनसे। आप ऐसे व्यक्तियों को जब मिलें जो भगवान के भक्त हों, तो उनमें गुण देखेंगे कि वो कुछ कुछ लेना नहीं चाहते आपसे, वो देना चाहते हैं, चाहे ज्ञान देने की बात हो या कुछ और देने की बात हो, प्रसाद देने की बात हो, ग्रंथ देने की बात हो, वो देना चाहते हैं। तो ये भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान के प्रिय बनना है तो ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। फिर भगवान कहते हैं अनपेक्ष शुचित, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें अनपेक्षा होना चाहिए, शुचि होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, उदासीन। तो क्या क्या गुण है ये? ये गुण है अनपेक्ष, मतलब व्यक्ति किसी चीज पर आश्रित नहीं है इस जगत के। शुद्ध शुचि यानी बहुत शुद्ध है। शुद्धि दो तरह की होती है, बाहरी दृष्टि से हम शुद्धिकरण करते हैं स्नान आदि करके, आंतरिक शुद्धिकरण करते हैं हम जब सुबह सुबह उठकर हम ध्यान करते हैं भगवान का और भक्ति के अन्य कार्य करते हैं, ये हमारे आंतरिक शुद्धिकरण के लिए है। साथ ही साथ जो भक्त होता है वो बड़ा दक्ष एक्सपर्ट होता है, भगवान कह रहे हैं। किस चीज में एक्सपर्ट होता है? हर कार्य के सार को जानता है, शास्त्रों को ऊपर पूरा विश्वास है और शास्त्रों के सार को समझता है, और इसीलिए वो ज्यादा चिंता नहीं करता, वो शारीरिक स्तर पर नहीं रहता और सभी प्रकार के प्रयास इस जगत में कुछ पाने के लिए उनको त्याग देता है। तो यहां भगवान ये जो गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अब हमें सुनकर लग रहा होगा बाप रे इतने सारे गुण हमारे अंदर हमें लाने हैं, ये तो बहुत कठिन है, हो नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं नहीं, बड़े आसानी से आ सकते हैं भक्तिमाम। अगर आप भक्ति में लगोगे तो ये गुण अपने आप आते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महत्गुण। तो जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचन, जिसने भगवान की भक्ति कर ली है, सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः, देवताओं के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर भक्ति करना है, भक्ति का मार्ग का पालन करो तो ये गुण आएंगे। कौन से गुण आएंगे? आगे वर्णन भगवान करते हैं कि अगर उसे कुछ बहुत ज्यादा चीज मिल जाती है तो बहुत प्रसन्न नहीं होता, कुछ नुकसान हो जाता है तो ज्यादा दुखी नहीं होता, न शोक करता है, न बहुत ज्यादा इच्छा करता है। इस जगत में हम बंधे हुए हैं क्योंकि हम ये दो चीजें करते हैं, किसी चीज की इच्छा करते हैं, ये मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो शोक करते हैं, हाय हाय क्या हुआ, मैंने इतना कुछ किया फिर भी मुझे नहीं मिला। लेकिन जो भक्त होता है वो कोई चीज की प्राप्ति के लिए ज्यादा चिंता नहीं करता, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो शोक नहीं करता। तो इसीलिए ऐसे भक्त होने चाहिए। और भक्त का गुण बताते हैं कि वो भगवान के लिए हर प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार होता है, फिर वो ये नहीं देखता कि ये शुभ है ये अशुभ है या कोई भी चीज है, तो वो इन सब कार्यों में इनसे मुक्त रहता है क्योंकि भगवान के लिए कार्य करता है। जब भगवान के लिए कार्य किए जाते हैं, जैसे कर्म विकर्म और अकर्म इन तीनों को हम लोग सुन चुके हैं, तो ये जो है ये अकर्म है, अर्थात जिससे कोई कर्म का फल नहीं लगता, और इसीलिए ये गुण हमारे अंदर हमें लाने चाहिए। और आगे अन्य अंत करते करते भगवान इस अध्याय के और भी गुणों को कह रहे हैं। भगवान ने बहुत सारे गुण दिए हैं, हमें प्रयास करना चाहिए जितने हम ला सकें। तो वो अपने मित्रों और शत्रु के लिए समह शत्रु च मित्रो च, अपने मित्र और शत्रु के लिए वो समान रहता है। क्यों? प्रहलाद महाराज जब पढ़ाई कर रहे थे बचपन में, गुरुकुल में भेजा गया उनको, उनके गुरु जो वो भी असुर थे पढ़ा रहे थे उन्हें, तो क्या पढ़ा रहे थे कि देखो एक हमारा शत्रु होता है जो हमारा विरोध करता है और मित्र होता है। प्रहलाद महाराज ने प्रश्न किया अपने गुरु से कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, किसको शत्रु मानते हो आप? जो व्यक्ति आपको आपकी इंद्रिय तृप्ति में मदद करता है वो मित्र हो गया, और जो विरोध करता है वो शत्रु हो गया, ये तो सही नहीं है। तो कौन मित्र है कौन शत्रु है? दरअसल ना कोई मित्र है ना शत्रु है, ये तो हम मान लेते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है, उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो वो भगवान के भक्त हैं। तो हर तरह से सुख में दुख में हानि में लाभ में वो समान बने रहते हैं, और अच्छे संग में रहते हैं, कभी भी गलत संग में नहीं जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गलत संग में नहीं जाते हैं क्योंकि उन्होंने मौन धारण किया है। मौन धारण करने का अर्थ क्या है? चुप नहीं रहना, केवल कृष्ण के बारे में बोलना, अच्छी चीजें बोलना, और इसी में वो संतुष्ट रहते हैं और अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में वो बिताते हैं। सो ये 12वें अध्याय में कहकर अब भगवान अंतिम श्लोक इस अध्याय का कहते हैं कि कृष्ण को ही परम उद्देश्य जीवन का। हम जीवन में गोल सेटिंग करते हैं कि हमारा गोल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, बड़ा स्मार्ट मॉडल होता है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ये सारे चीजें हैं। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानम परम भक्तास्ते तीव मे प्रियः। बहुत अभी तक तो भगवान ने बताया ये भक्त मुझे प्रिय है प्रिय, अब अति प्रिय है मुझे कौन? जो अपने जीवन का उद्देश्य मुझे बनाता है, जो भक्ति के पथ पर चलता है। ये तो धर्ममृतम इदम, ये जो धर्म की बात की भक्ति की बात की, वो उस पथ पर चलता रहता है। कैसे? यथोक्तम पर्युपासते, पूर्ण रूप से मेरी सेवा में नियुक्त हो जाता है। कैसे? श्रद्धान परमा, मुझे परम उद्देश्य बनाकर श्रद्धा से मेरी सेवा करता है। तो वो अतीव में प्रियः, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान सार दे रहे हैं पूरे भक्ति योग का कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि भक्ति के पथ पर चलना है। भगवान ने कहा ये तो धर्मामृतम इदम्, हमें भक्ति के पथ पर चलना है। भक्ति का पथ क्या है हम अभी आपको बता चुके हैं, आध्यात्मिक गुरु के अधीन रहना, सुबह उठकर जप करना, वो सारी बातें तो भक्ति का पथ है। वैसे भक्ति प्रधानतः 9 रूपों में की जाती है, 9 अंग हैं भक्ति के, तो 9 अंगों में की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनव लक्षणा। तो भक्ति के 9 अंग हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए। तो वो सब किसी एक आध्यात्मिक गुरु के अधीन रहकर। तो भगवान कह रहे हैं कि आप जीवन में गोल सेटिंग करो, लेकिन वो सब टेम्परेरी गोल है। अल्टीमेट गोल, जीवन का सर्वोच्च गोल, सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च उद्देश्य श्री कृष्ण हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि श्रद्धानम मत परमा, मुझे परम उद्देश्य जानते हुए भक्ति में लगो, आपके जीवन को निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तो इस अध्याय में भगवान ने भक्ति का गुणगान किया कि वही आत्म साक्षात्कार का पथ है, निराकार पथ। भगवान कहते हैं कि ये केवल समर्पण के आने तक है, जब समर्पण कर दिया तो भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा भौतिक चीजों की चिंता नहीं करनी है, लेकिन अपने अंदर उन गुणों को लाना है जिससे कृष्ण की कृपा आए और हम भगवान को अपने जीवन का परम उद्देश्य, परम गोल, टॉप मोस्ट गोल एज कृष्णा, वो हम बना सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो आप सबके आभारी हैं कि आप सब बड़े ध्यान से इसको सुनते हैं और आशा करते हैं इसका पालन भी करते होंगे जीवन में। तो और हमें ये भी आशा है कि इन आज हम 12 अध्यायों को पूरा कर चुके हैं, आप में से कुछ लोगों से सुनना चाहते हैं कि ये 12 अध्याय आपने सुने हैं तो आपको क्या लाभ मिला, इससे कुछ पालन हुआ, कुछ जीवन में बदलाव करने की इच्छा हुई तो क्या आपको लाभ हुआ। अगर आप में से कुछ लोग बोलना चाहें, भगवद गीता के 18 में से 12 अध्यायों की चर्चा हो चुकी है, बस 6 अध्याय और बाकी हैं, पूरे 18 अध्याय समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आज आपसे कुछ सुनना चाहते हैं कि कैसा लगा आपको ये 12 अध्याय, कुछ लाभ हुआ या कोई आपके जीवन में बदलाव इससे, या कुछ संदेश आपको मिला तो आप बोल सकते हैं। पहला ये हाथ अपर्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, वैसे तो मैंने खुद क्वेश्चन पूछने के लिए रेज किया था एंड आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका जवाब दूं क्या?
यस प्लीज, बाद में पूछिएगा, आज आपसे सुनना चाहते हैं आप सबसे।
हाँ, मैं जो आज आपने पूछा है मैं उसका जवाब दे देती हूँ। मेरी आवाज ऑडिबल है ना ठीक से?
हाँ जी ऑडिबल।
जी जी, सबसे पहले तो ये है कि भक्ति तो हमें करनी है कर्म योगी बनकर, कर्म को करते हुए, और अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है हमको। कर्म कर जो भी हम वट एवर वी आर डूइंग, हमें उसको भगवान को समर्पित करते हुए ही हमें सारे काम करने हैं। तो प्रभु जी इस पे मैं मोर एम्फसाइज करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं यदि कहूँ कि मैं 100% कर रही हूँ, उसको फॉलो कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन ये टाइम ले रहा है अभी कि अपने आप को पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस बनाने में, कि हर काम को भगवान को समर्पित करना। तो मतलब मेरा टारगेट यही है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, मैं अपना प्रोफेशन में हूँ, घर का है, कुछ भी है, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने आप को बनाने का मेरा टारगेट रहता है। और अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा कहो, बस ये मेरा टारगेट है, मैंने इतना सीखा है।
थैंक यू। आपके अगर समय आज हुआ तो प्रश्न लेंगे आपके थोड़ा बाद में, बाकी लोगों से सुन लें अगर आपकी अनुमति हो तो।
जी जी प्रभु जी बिल्कुल।
थैंक यू। नम्रता।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सबसे बड़ा जो लाभ मुझे लगा वो ये है कि कृष्ण के लिए जो मन में भाव है वो बहुत बढ़ गया है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, बिकॉज जो सुबह की मेडिटेशन क्लास शुरू हुई थी और अभी भी जो चल रही है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने ये गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बनाया था, उसमें जो माता जी हैं वो मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितना ज्यादा हेल्प कर रही हैं हम सबकी। तो इसके लिए मैं आपको पूरे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, बिकॉज उससे सबसे पहला लाभ ये मुझे हुआ है कि मन जो है वो कंट्रोल होने लगा है। मैं ये नहीं कह रही बहुत कंट्रोल हो चुका है, बट कंट्रोल होने लगा है। जो पहले हमारे मन में कुछ और चलता था, अभी मन में कृष्ण महामंत्र चल रहा है। तो ये दो लाभ मुझे बहुत हुए हैं।
बहुत अच्छा, थैंक यू नम्रता। शुभजीत।
हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले के जो सेशन हो रहा है इसमें से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो रहा है कि पूरा मेथोडिकल हो रहा है, तो ये इजी हो रहा है हमारे लिए कि इम्प्लीमेंट करना। और ये इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे लाभ हो रहा है कि मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जो मैं पहले नहीं हो पाता था लोगों को कन्विंस करना। उसके बाद थोड़ा अगर नेगेटिव कुछ हो जाता था तो माइंड में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाता था, लेकिन अब अच्छा मैनेज हो पा रहा है और इसका भी इन्फ्लुएंस लोगों को मिलने लगा है। तो
वेरी
थैंक यू।
नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा। ओके, वी हैव अनिरुद्ध कृष्ण। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, ओके, अभिषेक आप बोलिए तब तक।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी भगवत गीता के जो ये क्लासेस चल रहे हैं, इस क्लासेस से जो है वो जैसे खुद से पढ़ने पर उतना ज्यादा समझ में नहीं आ पा रहा था, बट जब आप पूरे तरीके से एक चार्ट बनाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब स्लाइड बाय स्लाइड, तो ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। और खासकर मेरे मम्मी पापा जो है, जैसे अभी अनिरुद्ध कृष्ण मेरे पापा हैं, और
अच्छा,
वो हाँ वो कुछ कहना चाहते हैं, वो भी घर पे हैं, गाँव पे, तो वो लोग भी जो है वो आपका पार्ट, मतलब जब भी क्लास होता है सेशन होता है, ज्वाइन करते हैं और उनको भी बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो रही है। तो इससे इससे ये बहुत हुआ कि मतलब मम्मी पापा को बैठकर आपका क्लास करते हैं तो उनको और ज्यादा क्लियरिटी हो रही है और कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ और बढ़ रहे हैं वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
थैंक यू अभिषेक, धन्यवाद। आपके पेरेंट्स शायद अब बोलना चाहें, अगर अनम्यूट करें तो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत
हरे
प्रणाम।
कृष्ण,
प्रभु
धन्यवाद धन्यवाद।
जी बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे मन में जो बदलाव लाए, हमारे विचार में, हमारे दिनचर्या में बहुत कुछ बदलाव आया है, और साथ ही साथ भगवान के प्रति आस्था बढ़ी है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। इसी क्या है, और दूसरी चीज है प्रभु जी, एक हमारी समस्या है कि हम लोग कभी जन्माष्टमी नहीं मनाते थे, इस बार जन्माष्टमी हम लोग जिसे बर्थडे मनाया जाता है वैसे मनाने का विषय है हम लोगों का। तभी ये सोचते हैं भगवान का भोग हम लोग जो है कब लगाएंगे, जन्म के बाद, जन्म के पहले, जन्म नहीं कराना है हम लोग, ठाकुर जी हमारे पास नहीं, क्यों तस्वीर हमारे पास है, ये चीज है। तो उनका भोग जो होगा जन्म के बाद लगेगा, जन्म पर जन्म नहीं कराना है हमको। तो बच्चियां हैं, छोटे छोटे हैं, सब उतने सब जगना मुश्किल है,
जगना मुश्किल है।
छोटे बच्चे नहीं जग पाएंगे उस समय तक, 12 बजे तक। जी हाँ,
वैसे तो साधारण नियम यही है कि 12 बजे आरती होती है मंदिरों में, क्योंकि वो समय है भगवान के प्रकट होने का, तो उस समय
हाँ
जनरली आरती होती है। लेकिन आरती के पहले ही भोग लगा देते हैं, सो भोग उसके बाद नहीं लगता है। सो
अच्छा,
इसीलिए आप चाहें तो पहले लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। और अगर रात तक नहीं रुक सकते तो कोई बात नहीं, जितना समय रुक सकते हैं उतना समय करके। मेन मुख्य है कि आप थोड़ा सा उपवास जरूर कीजिए, कल जन्माष्टमी का अवसर है, तो थोड़ा उपवास, जैसे हम लोग यहाँ पर कल रात को 12 बजे तक निर्जल उपवास करेंगे और रात के 12 के बाद जल लेंगे, तो उतना नहीं हो सकता, तो जितना हो सके थोड़ा सा उपवास जरूर कीजिए। एक्चुअली क्या होता है, जब भी भगवान का प्राकट्य दिवस होता है उस दिन हम लोग तपस्या करते हैं, उसको अधिवास कहते हैं, और अगले दिन उत्सव होता है। तो जन्माष्टमी में भी ऐसा ही है, पहले दिन हम लोग 12 बजे तक रात को उपवास करते हैं और अगले दिन नंदोत्सव कहते हैं, तो उस दिन बहुत बड़ा फीस्ट होता है। उस दिन क्या कहना चाहिए कि बहुत खाते हैं हम लोग, हाँ कि चलो आज उत्सव मना रहे हैं, तो पहले दिन नहीं होता है। तो आप प्रयास उतना कर लीजिए और जितना हो सके करिए, ज्यादा चिंता मत करिए कि रात तक करना है, हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं हो जितना हो उतना करिए, लेकिन उपवास कीजिए, भगवान के नाम का ज्यादा उच्चारण कीजिए और घर में जितना भोग हो सके अच्छे से बनाइए। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, यहाँ हमारा छोटा सा केंद्र है, लेकिन इसमें भी कल हम भगवान को 500 से अधिक भोग अर्पण कर रहे हैं यहाँ पर। सो आप लोगों को फोटो भेज देंगे जब कल ऑफर होगा उसके बाद। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके नवरिता, यस।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
जब से ये गीता क्लास के बारे में मैं ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे काफी आनंद आ रहा है, बहुत शांत हो जाती हूँ तब मैं, और कृष्ण का नाम लेने के लिए बहुत मन होता है मेरा। और मेरी जब क्लास खत्म हो जाती है तब मैं अपने फैमिली में भी अपने मम्मा पापा को बताती हूँ इसके बारे में, उनसे क्विज पूछ लेती हूँ कि मैंने बताया, आप बताओ इसमें क्या हुआ था, और उन्हें भी अच्छा लगता है।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा, गुड, कंटिन्यू लाइक दिस। हरे कृष्णा। ओके ज्योत्सना माता जी।
मैं सूरत से हूँ और स्मिता राधिका के साथ जुड़ी हुई हूँ। आपकी मॉर्निंग की प्रभुपाद की जो बुक्स की क्लासेस हैं वो भी मैं मतलब कंटिन्यूसली सुनती हूँ, तो अभी ये गीता क्लास भी आपकी सुनी है, तो उससे मेरी अप्रोच में बहुत बहुत चेंजेस देखने को मिला है मुझे। लाइक पहले जिन चीजों में मैं आलस कर जाती थी कि यार ये जाने दो अभी, बट अभी आई एम फीलिंग कि नहीं नहीं मुझे ये करना ही है, तो मेरी डे टू डे अप्रोच में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है और डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बिल्कुल कृष्णा, थैंकफुल टू कृष्णा कि मुझे आपसे मिलाया, आपके क्लासेस को अटेंड करने का मौका दिया मुझे, और मैं समझ सकी कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है।
बहुत अच्छा, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू, बाकी के 6 अध्याय भी जरूर सुनिएगा।
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
हरे कृष्णा। ओके नाउ वी हैव अपर्णा, आई थिंक आपके कोई प्रश्न है।
प्रभु जी प्रश्न तो है लेकिन मैं जवाब वही दूंगी जो आज आपने प्रश्न पूछा ना, उसका मेरे पास एक और जवाब है। ये कि जैसे कि प्रभु जी मैं सेंटर भी विजिट करती हूँ, मैं आती थी तो, और भी जैसे कुछ मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन जानना चाहती थी तो कभी नहीं पूछ पाई और कभी कुछ मौका भी नहीं मिला, तो जब से मैं ये गीता की क्लास दे रही हूँ आपसे, मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया।
थैंक यू, बहुत अच्छा, ये जो आपने बताया ऐसा प्रभुपाद के समय भी हुआ था, तो एक डिवोटी कुछ प्रॉब्लम लेकर आए, प्रभुपाद ने कहा जाकर मेरी बुक पढ़ो भगवत गीता कवर टू कवर, और उन्होंने पढ़ी और फिर बहुत अच्छी तरह से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए। थैंक यू। यहाँ पर किसी ने चैट में लिखा है कि 10th चैप्टर का अपलोड नहीं हुआ है, आई थिंक शायद हम पूछेंगे, अगर नहीं हुआ है तो YouTube पर अपलोड कर देंगे 10th चैप्टर का। और आगे किसी का कुछ कहना है? ओके किसी ने पूछा है कि कल क्या क्या करना चाहिए तो उसको बताएं। ओके आप लोग जो कल जन्माष्टमी का उत्सव है तो क्या करना है, सबसे पहली चीज सुबह बहुत जल्दी उठना है, सोते नहीं रहना कल के दिन पर। आप लोग अगर किसी इस्कॉन सेंटर के निकट हैं तो वहाँ सुबह मंगल आरती में जाइए, जनरली इस्कॉन में सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, अगर जा सकते हैं तो जाइए, अगर मना है कोरोना के कारण तो फिर आप अपने घर पर ही करिए मंगल आरती, या फिर एटलीस्ट ऑनलाइन देख लीजिए किसी मंदिर से। तो ये सुबह करें, भगवान के नाम का जप जरूर करें, कल ज़्यादा करें, प्रयास करें कि अगर आप 2 माला करते हैं तो 4 माला कीजिए, 4 करते हैं तो 8 कीजिए, 8 करते हैं तो 16 कीजिए, 16 करते हैं तो 64 कीजिए, थोड़ा सज्जप अधिक कीजिए। और साथ ही साथ कल का समय पूरा दिन उपवास कीजिए, अर्थात सुबह से जल बिल्कुल नहीं लेना रात के 12 बजे तक अगर हो सके। अगर किसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से कष्ट है तो फिर अगर वो जल ले लें तो ठीक है, लेकिन अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो निर्जल उपवास करें और पूरा समय भगवान के भजन कीर्तन में बिताएं, सबसे अच्छा होगा कि निकट के जो भी इस्कॉन केंद्र हैं अगर वहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं जाएं, नहीं चल रहे हैं तो ऑनलाइन उसको चेक करें। जैसे यहाँ पर भी इस समय हम लोग बहुत सारी इस समय तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर, एक सेकेंड आप लोगों को दिखाते, रेवती प्राण प्रभु रेवती प्राण प्रभु है क्या?
हरे कृष्णा दादा।
रेवती प्राण प्रभु जरा बाहर ले जा सकते हो आपका मोबाइल जो डेकोरेशन वगैरह चल रहा है उसको दिखाने।
लैपटॉप है।
अच्छा ठीक है, चलिए आपको फोटोज भेज देंगे आप लोगों को। सो इस समय बहुत अच्छे हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि किसी तरह अच्छा करें, तो आप लोग जाइए किसी सेंटर में। और आपका मोबाइल पर आपने लॉग इन किया? क्या नाम से? अच्छा, तो आप जरा ले जाओ नीचे, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, लॉग इन नहीं किया। सो आप लोग अगर दो मिनट रुके तो आपको, एक मिनट पहले आप लॉग इन कर लो, यहाँ दिखाई दिया। सो आपको हम इस समय हमारे क्या नीचे तैयारियां चल रही है, अभी तो क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं बाहर से गेट से लेकर अल्टर वगैरह, अल्टर तो अभी शायद बंद हो गया होगा, नहीं होगा तो खुद दिख सकता है, तो अभी आपको दिखाएंगे। ओके, आप लॉग इन कर रहे हो, क्या नाम से कर रहे हो? ओके करिए, ठीक है। तब तक और कोई कुछ कहना चाहते हैं? अमूल्य।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
हाँ, आपके माध्यम में हमने बहुत कुछ भगवान के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। ये दुनिया कृष्णमय है और जो भी कुछ हो रहा है ये हरि की कृपा या हरि की इच्छा से ही हो रहा है। जो पॉजिटिव हो रहा है वो हरि की कृपा मानते हैं, जो भी कुछ हो रहा है बाकी वो हरि की इच्छा मान सकते हैं हम। बस यही हमने जाना, बाकी कुछ आप ध्यान दीजिए।
नीचे ले जाओ इसको, ऑन करो, वीडियो ऑन करो खाली, और सब जो डेकोरेशन है फटाफट दिखा। ओके, सो अभी थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रशांत।
हरे कृष्ण बाबू जी।
हरे कृष्ण।
प्रभुपाद के क्लास के लिए भेजिए ना, और
प्रभुपाद के क्लास के लिए,
क्लास के लिंक प्रभुपाद के,
वो जो सुबह का रीडिंग का है। अच्छा, ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है?
जरूर शेयर करेंगे।
अच्छा, अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? नवरिता, कैन यू सी? यस। सो ये प्रभुपाद का आसन है जहाँ डेकोरेशन हुआ है, ये भगवान का झूला है, ये जो झूले की तैयारी चल रही है, बहुत सुंदर झूला बन रहा है भगवान का, और पीछे उसके जेल बना हुआ है। ये मंदिर का टेंपल हॉल है, और आई थिंक ऑल्टर बंद हो चुका है, नहीं तो अंदर आपको दिखाते, बहुत सुंदर डेकोरेशन है, अभी भी चल रहा है आई थिंक अंदर डेकोरेशन। सो ये इस समय डेकोरेशन है, ठीक है, पर्दा बंद कर दीजिए। और ये बाहर की है तैयारी, ये बाहर जो सजाया हुआ है। सो ये इस्कॉन सेंटर, ये आप देख सकते हैं। सो ये जन्माष्टमी के लिए हम लोगों की तैयारियां हैं, कल के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं लोगों का स्वागत करने के लिए। सो इस तरह से ये सारा बन रहा है। थैंक यू, धन्यवाद कुलदीप। हरे कृष्णा। सो आई थिंक आप लोगों ने सबने देखा, दिख भी रहा है, अभी तक चल ही रहा है। सो ये प्रवेश है, ये डेकोरेशन, बस थोड़ा थोड़ा अब ये चल रहा, अभी क्लीनिंग बाकी है, और उसके बाद कल सुबह के लिए हम लोग तैयार होंगे भगवान के स्वागत के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस शुभजीत, आप कुछ कहना चाहते हैं?
हरे कृष्ण प्रभु। कल रात को 12 बजे के बाद कैसे पारायण?
कल रात को 12 बजे के बाद हम लोग एकादशी का प्रसाद लेते हैं, उपवास का। नॉर्मल दाल राइस वगैरह नहीं लेते हैं, तो पहले थोड़ा चरणामृत अगर अवेलेबल हो उससे जल अपना उपवास तोड़ सकते हैं, उसके बाद थोड़ा फ्रूट्स या जो नॉन ग्रेन प्रसादम होता है उसको ग्रहण करना चाहिए, और फिर अगले दिन दोपहर को आपको फुल फीस्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन शिला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की उनका प्राकट्य दिवस है, तो इसलिए हम लोग अगले दिन भी दोपहर को 12 बजे तक उपवास रखते हैं और 12 बजे के बाद फीस करते हैं। सो प्रयास कर सकते हो, ठीक है? हरे कृष्णा। सो धन्यवाद आप सबका, और जन्माष्टमी की तैयारी आप सब भी इसी तरह कर रहे होंगे जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं आशा है, और नहीं कर रहे हैं तो करिए, जन्माष्टमी को उत्साह से मनाना चाहिए। से यहाँ पर इसको ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।